संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अमरीका का अंतिम लक्ष्य है, जबकि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना तत्काल प्राथमिकता है। इस बीच कतर ने पुष्टि की है कि अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच संभावित समझौते के मसौदे पर बातचीत चल रही है ताकि क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।